नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने इस मामले में मुंजाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। मुंजाल को अंतरिम राहत देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हाल ही में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विधेय अपराध पर एक समान स्थगन आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को उस मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, तदनुसार ECIR के तहत कार्रवाई पर रोक रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोक केवल याचिकाकर्ता के संबंध में है और ईडी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकार का कामकाज ठप होने के संभावित दिन से एक दिन पहले अस्थायी व्यय विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में रिपब्लिकन सदस्यों के साथ संघीय बजट को लेकर विवाद नए साल तक बढ़ गया है। वहीं यूक्रेन और इसराइल को युद्ध सहायता रुकी हुई है। इस सप्ताह इस विधेयक को सदन और सीनेट ने भारी अंतर से पारित कर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया है कि सरकार का छुट्टियों के बाद तक कामकाज बंद नहीं होगा। इससे सांसदों को चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी खर्च स्तर पर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए और समय मिल जाएगा। बाइडेन ने सैन फ्रांसिस्को में विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जहां वो एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। केरल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसके द्वारा आयोजित पहली पर्यटन निवेशक बैठक से वैश्विक महामारी के बाद के युग में राज्य सरकार की यात्रा व आतिथ्य क्षेत्र की पहल को काफ़ी बढ़ावा मिला है। केरल पर्यटन विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस आयोजन में क्षेत्र के लिए 15,116.65 करोड़ रुपए जुटाए गए। इसमें एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है, जिसमें केरल पर्यटन ने 250 करोड़ रुपए के हाउस बोट होटल प्रोजेक्ट के लिए तमारा लेजर एक्सपीरियंस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु स्थित आतिथ्य समूह अलापुझा तथा कन्नूर जिलों में इस परियोजना को आकार देगा। TIM 2023 में करीब 500 निवेशकों व उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 46 स्टार्टअप तथा पर्यटन क्षेत्र के अनुभवी 118 निवेशक शामिल हैं। कुल 75 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें से 52 निजी क्षेत्र से थी। उन्होंने निवेश प्रस्तावों में योगदान दिया। पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित 23 परियोजनाओं के अलावा 16 परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में प्रस्तावित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 14 सदस्य आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा परिवहन तथा स्वच्छ अर्थव्यवस्था संबंधी तीन महत्वपूर्ण पहलों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। ये कदम उन्हें शीर्ष मानक स्थापित करने, पारदर्शिता, समावेशिता तथा नवाचार की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। IPEF में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। बाइडेन की पहल पर मई 2022 में इसकी शुरुआत की गई। IPEF की यहां मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। बाइडेन ने बृहस्पतिवार को IPEF देशों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कहा, साफ साफ कहूँ तो अमेरिका और मेरे सहकर्मी सभी राष्ट्रों में और हिंद प्रशांत में शीर्ष पर पहुंचने, मानकों, पारदर्शिता, समावेशिता तथा नवाचार के मामले में राष्ट्र को शीर्ष पर ले जाने की होड़ चल रही है। रिलायंस समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ईशा अंबानी और दो अन्य लोगों को कंपनी का निदेशक बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जियो फाइनेंशियल ने शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी। जियो फाइनेंशियल की सूचना के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर 2023 को जारी पत्र में ईशा अंबानी, अंशुमान ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया को कंपनी का निदेशक नियुक्त किए जाने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में कुछ महीने पहले ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जुलाई सितंबर तिमाही में अपना एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना होकर 668.18 करोड़ रुपए रहने की बात कही है। अप्रैल जून तिमाही में ये 331.92 करोड़ रुपए था। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने शुक्रवार को कहा कि ई कॉमर्स उद्योग ने सरकार को केवल निर्यात मकसद से ऑनलाइन कारोबार के इन्वेंट्री यानी माल भंडार आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया है। इन्वेंट्री आधारित मॉडल में ऑनलाइन कामकाज करने वाली कंपनियां स्वयं अपना सामान रखती हैं और इसे सीधे ग्राहकों को बेचती हैं। देश की मौजूदा FDI नीति के तहत ई कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति केवल उन कंपनियों में है जो मार्केट प्लेस मॉडल के माध्यम से काम कर रही हैं। सारंगी ने कहा कि सरकार ई कॉमर्स माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।